América. Eso sí está describido en la Prabhupada, and also of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. So, in very few days, he preached to our whole world very wonderfully, wrote so many books. So today is the birthday of the Bhakti Vedanta Swami, birthday. And he was Abhay Charanar Day, Bind Day.
Abhay Day.
Abhay Day, Abhay Charanar. His father's name was? Gaurmohan Day. Day. So he also birthday of Sanskriti. So I request first Shyamrani to glorify him and give offering in his lotus feet by this. Have you collected some flowers? That we will give Pushpanjali. Yes, it's coming. They will offer Pushpanjali. Also, we will have to do Archan and Pushpanjali also. And we have a limited time for Paran. So I want that before Paran, we should finish everything. Also, we have to be ready for Nand Mahotsav. So I request that 10 to 15 minutes we should try to speak, not more than that. And then we will do archan and everything. I think Vrindavan Vilasini is senior Vaishnavi and he has served so much. When she was in teeny age, he left everything and joined, and he used to distribute books and airports here, there, hotel. No care for his prestige. Now the don't do like that. That is like preaching is stopped almost. At that time all the boys, all the girls, all the women, those who took shelter of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, always so enthusiastic that they used to go everywhere. No day and night. They used to go in very deep forests, among mountains, among cold countries, here and there, no fear at all. And that is why his mission was preached very soon in whole world. So I request her to speak 10 minutes, not more than that. That a treasure of his glorification. But I want that in short basis. Evening and discuss tomorrow also. No heart. Very grandiga. Very grandiga.
Coming on today.
How you doing?
Hiding and fighting both.
Come on at once. Have you seen? Seen him? Meet him? You have never met?
Where is both?
Apni beti kuch katha bole bani.
Kaachasirinkamjeda tasmai shri gurave namo. वैशाकल्पतुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नौमिहावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय श्रीकृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः श्रीकृष्ण करुणासिंह दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कंच राधा कंच नमस्तुति तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसूति देवी प्रणवामी हरि प्रिय बृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः.
दिस रिलेशनशिप हैज बीन रिसीव्ड by my divine master, O Vishuva Rashtutra Sarasishma Bhakti Pugyan Keshav Maharaj. He is disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, and Sai Maharaj also was initiated by him. He is the disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So, my divine master and Swami Maharaj was God brothers. In another point, Swami Maharaj took sannyas from my divine master Srila Bhakti Pugyan Keshav Goswami Maharaj. So we are also these God brother in relation. However, this relation is spiritual relation. This is not only the relation. The main relationship stands on the point. On point of service to Lord Krishna, we are the smallest particle of Lord Krishna. It is the true relation. It is told by Chaitanya Mahaprabhu, Jiva is the eternal servant of Lord Krishna. In Darshanic theory, Sarvankalidam Brahma also indicates that thing. It is nothing but that. This relationship is the devotion. To feel that in many different ways. It is regarded bhakti as bhakti when it is mixed with the rasa. And I start this in that point. I will not go to discuss about that because I have got no knowledge of the thing. And it will be discussed by my Godbrother Srila Narayana Maharaj to you, and you are always hearing it from his mouth. Let me say, Swami Maharaj Guru to you. Swami Maharaj was a good writer. And he was expert in putting the ideas in English
also because he was trained in English medium schools and colleges. For him, he got that knowledge, I think. No, it is not the main cause. Main cause is separate. However, let it go. Sangamara has tried to serve his Divine Master, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, in different ways, and mostly by preaching his ideas and preaching his teachings in English in all over the world. And he was successful by the grace of his soul. Sangamara called me once to come to America and join him. But my Divine Master was not agreed on this point, so I did not venture to join him, serve him. But I used to send some mudangas to him in times by which he was very pleased upon me. However, I am blessed to serve him in as little as maybe. Now I am requesting the disciples of my Arsalar Swami Maharaj that a little bifurcation was grew in time of in the living time of Swami Maharaj, and he called him as Prabhupada because his godbrothers wanted not to call anybody, any disciple, other than Prabhupada. It's Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, this Prabhupada address. But Swami Maharaj did not agree to their proposal, and this was one of the main points which was the bifurcation and not cordial reception was given to him. However, I am to request the disciples, though it is not unusual to call Divine Master Prabhupada, yet if we want to please our superior Guru, we should try to consider it and call Swami Maharaj Prabhupada as much place as we can. And Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati should be cordially called Srila Prabhupada. This much I am putting into you, precious time I am not going to lose. Thank you.
राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। मैं आज के शुभ अवसर पर मैं अपने परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पार्षद भक्ति प्रज्ञान के केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रेषों विष्णुपाशी संघ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणति और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आई थिंक इट विल बी बेटर दैट आई शुड स्पीक इन हिंदी। रामचंद्र प्रभु विल वर्ड बाय वर्ड ही कैन एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग्स विच आई कैनॉट एक्सप्रेस इन एन इंग्लिश। सो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड ही विल ट्रांसलेट यू समथिंग आई मे एक्सप्रेस इन इंग्लिश। मैं स्वामी जी बहुत थोड़े दिनों में ही इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही प्रीच्ड ऑल वर्ल्ड अबाउट हिज बुक्स ऑल ओवर वर्ल्ड इन अबाउट 40 best languages in the world, they were translated and they were preached, they were given. Especially he preached Hare Krishna, Hare Krishna all over the world. सब जगह उन्होंने प्रचार किया. उन्होंने नया कोई चीज नहीं प्रचार किया. He never preached anything new one. Something what his holy master told him. Especially in the line of Srila Rupa Goswami, Sada Goswami then. Up to Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. One day he translated all their missions in English. He made easy something for the Western devotees because they are not so intelligent thing in philosophy, Indian philosophy. So he made easy. Also he wrote books in his translation and explanation. He made some easy things. Otherwise I think that in Western countries he could not preach. वो नहीं प्रचार कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत साधारण रूप में उसकी व्याख्या करके सहज रूप में विश्व में उन्होंने प्रचार किया. आप लोग जानते हैं, अधिक मुझको अधिक नहीं कहने की जरूरत है. दो एक बात मैं कहना चाहता हूं. वो सदगुरु थे, ठीक बात है. प्रभुपाद जी सदगुरु थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती. ही वॉज बोनाफाइड गुरु एंड ही टूक इनिशिएशन, हरिनाम इनिशिएशन एंड ऑल्सो रिनाउंस ऑर्डर फ्रॉम बोनाफाइड गुरु. आई सी, हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद के जो शिष्य हैं या गौड़ीय मठ के सन्यासियों के जो शिष्य हैं उनमें में बहुत कम डिफिशिएट होते हैं. दे में डिफिशिएट किंतु बहुत कम. किंतु आजकल लोग पूछ रहे हैं, जहां भी हम लोग जाते हैं और स्कूल में भी इस तरह का ये चल रहा कि स्वामी जी जरूर एक सदगुरु थे किंतु उनके अधिकांश शिष्य जो सन्यासी थे, जो कि सारा जीवन उनकी सेवा की, उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रचार किया, कीर्तन किया, किंतु अधिकांश जो बड़े बड़े लोग थे वो लोग क्यों डिफिशिएट हो गए, क्यों गिर गए, इसका कारण क्या? क्या वो सदगुरु नहीं थे? क्या वो जानते नहीं थे कि हम जिनको शिष्य करें वो गिर जाएंगे? यदि वो नहीं जानते तो वो सदगुरु नहीं है. अंडरस्टैंड? Now they are discussing, even in ISKCON, and those who have left ISKCON are outside of ISKCON, everywhere. Now these questions are coming. Now some of them has been Ritik now. वो लोग Ritik होकर के अब नए रूप में प्रचार करने चाहते हैं. बस प्रभुपाद ही एक गुरु थे, इसके बाद में और कोई गुरु नहीं है, बस उनके नाम से हम लोग गुरु करेंगे. और ऋतिक होकर के अब गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु लोग सब गिर रहे हैं, इसलिए ऋतिक की जरूरत हुई. किंतु ये सब मूर्खता है, बुद्धिमानी नहीं है. थोड़े से हम प्रसंग के लिए मैंने ये कहा, आप लोग इस चीज को समझेंगे. स्वामी जी सदगुरु थे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं. किंतु ये लोग गिरे कैसे और वो जानते नहीं थे, इसलिए गिरे कि ऑल बिट बुक डिस्ट्रीब्यूशन खूब किया, That is book distribution in enormous, बहुत प्रमाण प्रचुर परिमाण में किया. In his book. उन्होंने नाम संकीर्तन को भी मृदंग लेकर के खाली पैर या जूता लेकर के चारों तरफ विश्व में कोने कोने में प्रचार किया, सब कुछ किया, किंतु उनके पुस्तकों को अच्छी तरह से देखा नहीं. हरिदास ठाकुर जी जैसे नाम किया, अपने गुरु का आदेश पालन किया. स्वयं स्वामी जी ने अपने गुरु का जिस प्रकार से आदेश पालन किया, उनके जो गिरने वाले शिष्य हैं उन लोगों ने अपने गुरु का वो आदेश पालन नहीं किया, इसलिए वो लोग गिरे. 16 माला से अधिक नहीं करते, और 16 माला भी हम समझते हैं कि वो नहीं करते थे चित्त को लगा करके. दूसरी बात, एक गिरने का प्रधान कारण ये कि उन्होंने स्वामी जी के अंतर्गत जो विचार थे उसको नहीं माना, वो लोग खुद ही गुरु होने लग गए. यदि वो तृणादप सुनी छोकर के उनके भीतरी जो भावना थी, भक्ति की जो भावना थी, उसको यदि वो पालन करते तो वो लोग नहीं गिरते. उन्होंने कोई पालन नहीं किया इसलिए गिर पड़े. किंतु उनसे जो जूनियर थे उन्हीं के शिष्य, वो लोग क्यों नहीं गिरे? फाई द जूनियर्स सीनियर्स फेल डाउन, बट वाई जूनियर्स, वाई यू ऑल नॉट फेलिंग डाउन? वाई? बिकॉज दे आर ओबेइंग समथिंग. इसलिए दीक्षा लेना ही या बाहरी सेवा कर देना ही प्रचुर नहीं है. गुरुदेव के भीतर जो विचार हैं, भक्ति के विचार, उसका जो पालन करेगा वो कभी नहीं गिर सकता है. बाकी सब लोग जितने भी पढ़े लिखे और जितने विद्वान और प्रचार करने वाले हों, उनका गिरना अनिवार्य है. अरे राधी शुड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन इवनिंग और एनी टाइम बिकॉज No, I should, because our parent time is going on. So I think this should be discussed in a long term. Otherwise we can misguide and misunderstand. मेरा कहने का ये तात्पर्य है, गुरुदेव के भीतरी विचारों को, भक्ति के विचारों को न लेकर के बाहरी विचारों को लेकर के जो चलेंगे, केवल मंदिर बनाने में लग गए, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए, पब्लिकेशन में भी लग गए, भले ही पब्लिकेशन के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूट के द्वारा कोई कृष्ण को नहीं पा सकता. प्रभुपाद माने उन्होंने, स्वामी जी ने कहीं कहा ऐसा, किंतु उनका ये विचार नहीं था जे केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन से या भिक्षा करके पैसा ले आकर के और बड़े बड़े सेंटर विश्व में हम खोलेंगे और इसी से ही हम मुक्त होकर के राधा कृष्ण की प्रेममयी वृंदावन में सेवा पाएंगे. ये कदापि नहीं हो सकता, कभी कभी हो ही नहीं सकता. इसलिए हमारे रूप गोस्वामी के जो आदर्श हैं, जिस प्रकार से जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने पालन किया, जिस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने गुरु लोकनाथ दास गोस्वामी का विचारों का पालन किया, जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर और गौरकिशोर दास बाबा महाराज जी के विचारों का, अंतर्निहित विचारों का पालन किया, वैसे भजन किया, तब तो शिष्य टिक सकता है. और नहीं तो कृष्ण भी दीक्षा दे देंगे किसी को, और की तो बात क्या है. और उनके विचारों का पालन लेकर के नहीं चलेगा तो वो भी गिरा हुआ है. वो उठा कब था जो गिरा? इसलिए यह कहना कि वो लोग गिर गए हैं यह गलत है. वो लोग कभी उठे ही नहीं, उनकी दीक्षा नहीं हुई. दीक्षा माने दिव्य ज्ञान. यदि उनको दिव्य ज्ञान कभी हो गया होता, इफ दे हैव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड दिव्य ज्ञान, हाउ दे कैन फेल डाउन? कभी नहीं गिर सकते हैं. इस चीज को समझेंगे. दिव्य ज्ञान की तो बात क्या, थोड़ा सा भी संबंध ज्ञान यदि हो जाए तो वो कभी नहीं गिर सकता है। इसलिए लोग जो लोग बाहरी फंडामेंट ये सब कामों को करते हैं किंतु भीतर में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करते, गुरु जी का तात्पर्य क्या है, उनकी शिक्षा क्या है नहीं लेंगे, भजन कैसे किया। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने भजन की शिक्षा ली, इसीलिए भागवत परंपरा है। कभी कभी गुरु श्रवण गुरु भी हो सकता है, शिक्षा गुरु होता है, इसलिए वही सभी कुछ है। किंतु जहां पर कभी जैसे हृदय आनंद श्यामानंद जी थे, नरोत्तम ठाकुर जी थे, श्रीनिवास आचार्य जी थे, उनका गुरु होने पर भी जी गोस्वामी को गुरु किया, ये भागवत परंपरा है। भागवत परंपरा भजन के ऊपर में निर्भर करता है और दीक्षा परंपरा में गुरु परंपरा में ये जरूरी नहीं है कि भजन की शिक्षा हो ही, कोई जरूरी नहीं है, उसमें कुछ गलतियां हैं त्रुटियां हो सकती हैं, किंतु भागवत परंपरा सिद्ध प्रणाली है, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह सकती, इस चीज को समझना चाहिए। क्योंकि वो परख करके जबकि भजन करने की लालसा उत्पन्न होती है उस समय भागवत परंपरा को ग्रहण करता है और अनर्थग्रस्त अवस्था में ये गुरु करता है। इसलिए गुरु परंपरा में कुछ त्रुटियां हैं। गुरु महाराज जी का विचार ये है, गुरु परंपरा भागवत परंपरा के अधीन और अंतर्भुक्त है, क्रोड़ीभूत है। शुद्ध गुरु यदि होगा तो भागवत परंपरा में भी होगा, गुरु परंपरा में भी है, दोनों में है। किंतु कभी कभी एक गुरु का शिष्य गुरु के विचारों को लिया नहीं, केवल दीक्षा ऊपर से ले लिया और ऊपरी विचारों को प्रचार करने लगा और कुछ दिनों के बाद में गिर गया। उसका यदि शिष्य होगा वो तो शिष्य है, कहेगा जब मैं शिष्य हूं, किंतु ये बोनाफाइड शिष्य नहीं है। इसलिए इन चीजों को समझ करके वैष्णव आचार्यों के अंतर विचार को ग्रहण करके भजन के विचार को लेकर के चलना चाहिए। तो एक पढ़ा लिखा भी नहीं रहेगा, मूर्ख भी यदि सांसारिक दृष्टि से जैसे गौरकिशोर दास महाराज कौखा गौघा नहीं जानते और बड़े बड़े विद्वान लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते थे, उनको ये शिक्षा देते थे भागवत का क्या तात्पर्य। इस तरह से होता है, पढ़ने लिखने के ऊपर में भक्ति निर्भर नहीं करती, श्रुति विद्या है। इसे जो श्रवण अच्छी तरह से करेगा अपने गुरु की और उनकी विषम्भ रूप से सेवा करेगा, उनकी कृपा से अपने आप सब कुछ स्फूर्ति होगी। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्ते कत्ता ही हर्थापकांसंते मना। जो अंतर्निहित होकर के प्राणों को उनके चरणों में समर्पण करके उनकी अंतर्निहित शिक्षा को समझने की चेष्टा करके भजन करेगा, उनकी भजन की प्रणाली को ग्रहण करेगा, वो कभी नहीं गिर सकता। और जो गिर गया वो सब समय गिरा हुआ, वो उसका उत्थान कभी नहीं हुआ, उसके गिरने का प्रश्न नहीं, वो तो सब समय गिरा हुआ था, मूर्ख लोगों की दृष्टि में बहुत बड़ा आचार्य हो गया था। तो जो लोग उन लोगों को गिरा हुआ देखते हैं वो सभी मूर्ख हैं, वो पहले से गुरु गिरे हुए हैं, उनको कभी तत्व ज्ञान संबंध ज्ञान नहीं था। किंतु एक बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से भजन करता हुआ भी अपिते चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, यदि कोई अनन्य रूप से भजन करता हुआ भी यदि व्यभिचार में लिप्त हो जाए तो ये कोई बड़ा भारी दोष नहीं है, है उसकी भक्ति कुछ दिनों के लिए रुक जाएगी किंतु उसकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। इसलिए यदि स्वामी महाराज जी के शिष्य लोग भजन करने वाले थे या भजन कर रहे थे या भजन करने की कुछ इच्छा थी, थोड़ा भी भजन किया और स्त्री के प्रति लुब्ध होकर के कामना वासना से छोड़ दिया, नीचे गिर गए, तो उनका कल्याण होगा आज न कल। फिर उनका वो दुराचार नष्ट होने के बाद में भक्ति देवी फिर उनको लेकर के प्रतिष्ठित कर देगी। किंतु जिन लोगों ने वैष्णव का अपराध किया, शास्त्र का अपराध किया, अपने गुरुदेव के चरणों में अपराध किया, विशेष करके वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, वो सन्यासी रहने पर भी वो नीचे गिरे हुए हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है।
अपराध का विचार भक्ति में होता है। एक आदमी गिर गया, किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो गया कुछ दिनों के लिए, ये दूसरे जन्म में या उसका भोग समाप्त होने के बाद में फिर हो सकता है कि उसका उद्धार हो जाए, किंतु जो वैष्णव अपराधी है, गुरु अपराधी है, वो संन्यास लेने पर भी वो गिरे हुए हैं, उनका उद्धार होना बड़ा कठिन है। उनमें से जो गिर गए हैं और उन्होंने वैष्णव अपराध किया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं अभी भी और पहले भी किया, उन लोगों का उद्धार होना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए आप लोग सावधान होकर के उनके अंतर्निहित विचारों को लेकर के, पढ़े लिखे भी नहीं है, विद्वान नहीं है, कोई भी बात नहीं है, कोई गुण नहीं है, पागल भी है कोई हर्ज नहीं, उनके हृदय के भावों को लेकर के भजन कीजिए, उनकी कृपा होगी और आप लोग साथ ही ऊपर में बढ़ सकेंगे। आज यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और पीछे से हम लोग उनके संबंध में विचार करेंगे। आज अभी हम लोग, अभी उनका अर्चन हो गया है, अभी हम लोग उनको पुष्पांजलि दे करके फिर आप लोग पारण करेंगे। पारण करने का भी समय
9:30 के अंदर
है, इसलिए सभी लोग जा करके पारण करें।